بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الفالق والله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحابه وبارك وسلم. أما بعد، মাজ বিন জুবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রওয়ায়াত ফরমাতে হ্যায় কি হাদিস নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়া, মাফাতিহুল জান্নাহ শাহাদাতুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। রওয়ায়া আহমদ, হামনে দুনিয়া মে ये देखा कि किसी इनाम के लिए या किसी अजर के लिए ज़रूर बज़रूर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। जब वो मेहनत करता है तो उस मेहनत पर उसको अजर दिया जाता है। एक दस्तूर है यहाँ का, स्टूडेंट है, तैयारी करता है अपने इम्तहान की और बहुत मेहनत करता है। मेहनत के बाद साल ख़त्म होता है, इम्तहान होता है, तो फिर जो है उसको सही मेहनत करने वाला जो स्टूडेंट होगा उसको बाकायदा इसके लिए इनाम दिया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है उसके इनाम को। तो इसी तरह हर मुकाम पे आप देखें, या कोई रेसिंग हो रही है या कोई आदमी एथलेटिक है, गेम खेलते हैं, जीत जाते हैं तो उसके बाद उनको इनाम दिया जाता है। अल्लाह सुभान व तआला भी इसी तरह जब बंदे उसके पास वापस जाएंगे तो जो अपने इम्तहानात में कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह पास कर देगा उस इम्तहान में, तो फिर उनको इनाम तकसीम करेगा और इनाम दिया जाएगा। मेहनत जो है ये हमने इस दुनिया में करनी है और ये दुनिया जो है हकीकत में ऐसी ही है हमारे लिए। यहाँ पर तो इनाम नहीं है, हम गलती ये करते हैं कि इस दुनिया में इनाम तलाश करते हैं। दुनिया ये इनाम की दुनिया नहीं है। यहाँ पर क्या है, इंसान को मेहनत करनी है और ये अल्लाह का वादा है कि जब इंसान मेहनत करके मेरे पास आएगा तो मैं उसको इनाम दूंगा। इनाम की सूरत जो है अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है, वो क्या नाम होगा, आखिरत में उसको जन्नत दी जाएगी। वही लोग जन्नत में दाखिल होंगे जिनसे अल्लाह राजी होंगे और उनकी मेहनत का उनको इनाम दिया जाएगा अपने फजल से। अब यह है कि भाई हम इस दुनिया में किस चीज पर मेहनत करें, सही चीज क्या है जिसको हम समझें और फिर उस पर मेहनत करें। ऐसा ना हो कि हम किसी और गलत चीज पर मेहनत कर रहे हों जब अल्लाह के जरूर पेश हो कि वो चीजें जिस पर तू मेहनत करता रहा, मेहनत जिस चीज के लिए तुझे मेहनत के लिए कहा था उस पर तुमने मेहनत नहीं की। तो ये हदीस मैंने आपके सामने एक पढ़ी है, बहुत ही इस लिहाज से बहुत ही खूबसूरत हसीन हदीस है जिसमें एक बहुत वादा इशारा मिलता है कि सब कुछ जो भी है मेहनत हमारी वो एक चीज पर है, उसको समझ ले आ रहे। एक ही चीज है जिसमें हमें बहुत सख्त मेहनत करनी है, सारा दारो मदार उसी चीज पर है। वो क्या चीज है? पहली चीज जो बताई वो ये है शहादत, गवाही देना दिल से और जबान से। जबान से आदमी इकरार करता है और दिल से जो है गवाही देता है, कबूल करता है। जबान से इकरार कर रहा है, दिल से गवाही दे रहा है, मानता है। क्या? ला इलाहा इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह। यही इस हदीस में बताया गया, मफातिहुल जन्ना शहादतुन ला इलाहा इल्लल्लाह। बस इस एक चीज पे है सारी जिंदगी हमारी दारोमदार। पहली स्टेज सारा बनना है, जो काम हमारा इस कलमे पे बन रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये एक स्टेप से अल्लाह पाक ने हमें दिया है, यही है सब कुछ। पहली स्टेज इसकी जो है इस कलमे की, जो हमें जन्नत तक ले जाएगी, जिससे अल्लाह राजी होगा। इस कलमे की पहली स्टेज क्या है? शहादत। जो आदमी इसको तस्लीम कर लेगा, इकरार कर लेगा कि वाकई मेरा माबूद सब कुछ क्या है, अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के रसूल हैं, हमारे नबी हैं, उनकी उम्मती हैं, ये इकरार है। जिसने ये इकरार किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो जन्नत के करीब हो जाते हैं। दो फिरके बन जाते हैं दुनिया में, एक जो उसने इनकार कर लिया और जिसने इनकार किया। जिन्होंने इकरार किया वो जन्नत की तरफ चल पड़े अल्हम्दुलिल्लाह। पहली स्टेज तो इस कलमे की यह है कि भाई इसके अलावा काम नहीं बनेगा। ये बहुत लाजमी चीज है कि इसके बगैर दावत करे आदमी कि मैं जन्नत में जाऊंगा तो है ही सवाल ही पैदा नहीं होता इसके बगैर। ये पहली स्टेज हम देखें तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई जबान नहीं जो उसका शुक्र कर सके। बगैर समझ बगैर मांगे पैदा होती है हमारे कानों में ये कलमा पहुंचा दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस कलमे से वाकिफ हो गए ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसमें ना हमें कोई मेहनत करनी पड़ी, ना कुर्बानी देनी पड़ी, ना हमें कुछ एहसार करना पड़ा, कुछ भी नहीं। हालांकि कलमा तो इतना है किस तरीके से हासिल हुआ और कैसी कैसी मेहनतों के साथ सहाबा कराम ने इस कलमे को कबूल किया, हासिल किया, और किस तरह नबी करीम ने इस कलमे को पहुँचाया लोगों तक। उस हिस्ट्री को देखें, उन दास्तानों को देखें और अपने आप को देखें, हमें पता ही नहीं कब मुसलमान हुए थे, है ना, याद भी नहीं। तब तो जन्म से अल्हम्दुलिल्लाह ने हमें ईमान अता फरमा दिया था, इसे बहुत शुक्र करनी चाहिए इंसान को या नहीं करना चाहिए? बहुत शुक्र अल्लाह तआला तेरा करा है, बहुत शुक्र है तेरा। कौन मजहब डाल देता हमारे जहन में कि और इंसान बना देता, हजारों मजहब फैले किसी और तरफ लगा देता। नहीं, अल्लाह ने हमें पैदा किया, मुसलमान के घर में पैदा किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कितना करम भाई रूह उसमें डाली। तो शुरू से अल्लाह ने हम पे ये करम फरमा दिए कि अल्लाह ताला ने ये एहसान किया है। एक स्टेज तो पूरी होगी, हमारी जन्नत के करीब आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, बोले अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आसानी हो गया मामला जी। अब दूसरी स्टेज क्या है? कलमे, फिर वही कलमा आता है, लेकिन यही कलमा जाएगा जन्नत, क्यों है ना हदीस मफातिहुल जन्ना। दूसरी स्टेज क्या है? दूसरी स्टेज कलमे की यह है कि अल्लाह ने हमें दे दिया तो फरमाया कि भाई अब मेहनत इसकी क्या है कि पूरी जिंदगी आपकी जो है इसी के गिर्द घूमनी चाहिए। इस कलमे के इस कलमे से एक इंच भी दर नहीं होना, ना एक बाल फरार भी सदर नहीं होना जिंदगी, अगर अल्लाह से इनाम लेना है। नहीं लेना तो मर्जी भी जो चेक करें ऐश करते रहे, वो हमारा अपना दीन होगा, हमारी समझ होगी अल्लाह के नाम। नहीं, इस कलमे के साथ आपने जिसका इकरार किया है क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसी औरत का, किसी मर्द का, अल्लाह ने एक तो ऑटोमेटिक हमें जन्नत के करीब कर दिया, और दूसरा यह है कि बाकी चीज़ हम पे डाल दी अल्लाह पाक ने। इतना बड़ा काम तो आधा बना ही दिया, तो आधा काम हमने अभी करना है। देख कि कब तक करना है कोई पता नहीं, कोई 30 साल दिया है, किसी को 40 साल दिया है, किसी को 50 साल दिया है, किसी को 70 साल दिया है, किसी को 80 साल दिया है। 80 साल में उसमें 30 साल बीमारी में लगा दिए, 25 साल उधर लगा दिए, किसी तरफ लगा दिए। हर आदमी को एक उम्र का टारगेट दिया अल्लाह पाक ने, इस टारगेट में, इस उम्र में आपने दुनिया में रहना है, शादी भी करनी है, बच्ची पैदा होंगी शादी भी करनी है उनकी, खुद भी शादी करना है, फिर अपने नवासे पोते पोतनी भी देखनी है, फिर उनकी भी आपने ब्रॉटअप करनी है, और आपने यहाँ मकान भी बनाना है, गाड़ी भी चलानी है, रिश्तेदारों को भी देखना है, हमसाओं को देखना है, कारोबार भी करना है, नौकरी, सारी जिंदगी गेम, सारी के सारी जिंदगी जो भी करना है, लेकिन क्या है, एक इंच भी इस कलमे के खिलाफ नहीं करना। यार समझ फिक्र है, सच बताए बहुत मुश्किल है ही नहीं किसी एहसास। देखिए किस कदर पगड़ी हो गए हम लोग, तो किसी औरत किसी मौत का सासी कोई, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि भाई तुम्हें जिंदगी से नहीं कर, जिंदगी दूंगा तुम्हें, सब कुछ दूंगा, कपड़े दूंगा, खाने को दूंगा, पहनने को दूंगा, भाई कुरान की आयत मेरे जहन में घूम रही है। अल्लाह ने कहा तुम्हें कपड़े भी दूंगा, तुम्हें खाना भी दूंगा, तुम्हें हर चीज दूंगा, लेकिन यह है उसको बिल्कुल किस तरह हो, सारा कुछ जो भी इनामत दूंगा, अमीर बना दूं, बादशाह दे दूं, औहदे दे दूं, सब मेरी अतिया अल्लाह ताला का, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, इसके दायरे से नहीं निकलना, इसमें कायम रहना है, बस एक बाल भी इधर उधर नहीं हो सकते, मोमिन की शान नहीं ना, फिर देखना मेरे इनामत क्या मिलते हैं तुमको, कितनी देर कहने बिल्कुल देर नहीं, तुझे क्या पता कब बुलाने वाला मैं तुझे, बहुत जल्दी बना लो तर्जुन हो, अल्लाह कहते हैं बहुत जल्द आने वाला है मेरे पास, फाइल पहुंच गई, वो साइन करने तेरे, ये ना देखना मेरी उम्र नहीं है, विस्वास दाढ़ी नहीं हो, तुम्हें रिटायर्ड नहीं हुआ, तो फला नहीं हुआ, ये कोई सिस्टम अल्लाह के यहाँ नहीं, हर वक्त रेडी रहना चाहिए आदमी, बस किस तरह रेडी रहे, इस कलमे के दायरे में रहे, अगर अच्छी मौत चाहता है, अच्छी जिंदगी चाहता है, आखिर जो दायमी जिंदगी है, सुबह से लेकर शाम तक समझे कि मैं एक दायरे के अंदर हूँ, इस तरह से मेरा एक इंच भी बाहर नहीं जाना चाहिए, सब जो हमने गुजारना है, जो भी मुझे अल्लाह ने ड्यूटी दी है, बच्चे दे दिए, औलाद दे दिया, माल दे दिया, नहीं दिया, दिया है नहीं दिया, बीमारी दी है, सेहत दी है, अस्पताल में हो, बाहर हूँ, बाजार में हो, कहीं भी हो, ये अल्लाह ने दिया है, तुम्हारा दायरा वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, क्या दायरा है कि भाई ये है जिंदगी किस तरह गुजरेगी, इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह से सारे मेरे अहकाम होंगे, एक एक इंच में मैं तुझे गाइड करूंगा, सुभानअल्लाह, फुल प्रोटेक्शन देता हूँ, हस्बुनल्लाह हु निअल वकील, तेरा मैं वकील हूँ, बस समझ तुझे कोई फिक्र की बात ही नहीं, हर चीज का जामिन मैं तेरा हूँ, रोटी कपड़ा खाना पीना चलना सेहत उठना बैठना चल सब कुछ, बीवी बच्चे मैं सबका तेरा क्या हूं, मैं कफील हूं, कितना बड़ा कफील है मुझे बताया, कितना सारा वाला काम कर दिया, कितनी बेवकूफ है हम, वो कहता है मैं कफील हूं, कहते नहीं हम खुद करेंगे, क्यों, एक तरह दो पचास चीजें हैं, जब हम कलमे से निकलते हैं तो मैं बन जाता हूं, मैं ही खुदा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही रब हूं, मैं ही रोटी लेता हूं, मैं ही कपड़े बनाता हूं, मैं ही बच्चों को पालता हूं, उस कलमे से निकल, जब उस कलमे में रहेंगे तो वो क्या कहता आदमी, मैं तो हूं ही कुछ नहीं, मेरा काम तो एक ही है बस, कि तुझे अपना रब मान लू, बाकी काम तो तेरा खुद ही, तू करता रहे, मुझे तालुक ये नहीं हो रहा, ना हो इसमें तेरा मर्जी है, तू ये हो गया तब भी तेरी मर्जी, लेकिन खुद ना कदम उठाना है इस पर, ये अल्लाह ने खुद ना कदम उठाना कि चलो यार ये नहीं हो रहा तो इस तरह कर लें, बस वहीं खत्म हो जाए, बिल्कुल नहीं, दायरे में मुझे रब मान लिया, मालिक मान लिया, खालिक मान लिया, कादिर मान लिया, राजिक मान लिया, मानते ही नहीं मानते, कहे जो दिए ला इला इल्लल्लाह, तो माने बैठे नहीं तो फिर दायरे से बाहर क्यों निकलते हो, कितनी बेवकूफी है, कितने लोग जहन्नुम में जा रहे हैं, और अल्लाह ने क्या कहा, हर चीज का मैंने तुम्हें अहकाम के जरिए, हुक्म के जरिए, पूरा किताब के जरिए मैंने तुम्हें एक एक इंच उठना बैठना खाना पीना चलना बाहर तिजारत सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए तरीका बता दिया, और मैं खुद जामिन हूं, देखूंगा मैं खुद ऑब्जर्व करूंगा उस आदमी को, तुम्हें मैंने किस्मत में रिज़्क दे दिया दुकान के जरिए, अल्लाह पाक कहता है ठीक है मैं दे दिया, अब तेरा क्या काम है, जब तू दुकान करेगा तिजारत करेगा तो फिर क्या होगा, अल्लाह अल्लाह की तरफ, बस इस तरह तुम्हें करनी है तिजारत, माल ला के डाल देना है, खड़ा हो जाना है, और जो मैंने कानून बनाया है तिजारत पर उसके मुताबिक चल, आ रहा है या नहीं आ रहा, दुकान चल रही है नहीं चल रही है, भाग रही है दौड़ रही है खड़ी है, इससे तेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये सब किसके अख्तियार में है? तूने जहां टांग अड़ाई मेरे कानून को तोड़ के उस दुकान को चलाना चाहा और फिर गया। आसान चीज है, बहुत बहुत आसान चीज है। जब तुझे रोटी ना मिले अल्लाह तआला के, भूखा सोए तब बात करना, खड़ा है दुकान में नहीं चल रही ना चले, तुझे इसी ताल्लुक है, तेरा गाना उसमें चीजें डालना। हाँ बस उस तरफ कदम नहीं उठाना कि जिस चीज को मैंने बच्चे मैंने दे दिए माशाल्लाह, बस अब बच्चों की परवरिश कैसे करनी है कि मैं फला मुल्क में पहुंच गया फला चल, हाँ ठीक है मेरी दुनिया जा, लेकिन दायरा मोमिन का क्या है? वही है, पैदा होते ही सबसे पहले कान में अजान देनी, होश आए तो कुरान हाथ में पकड़ाना है, और बड़ा हो जाए तो सीने में कुरान उतार देना है ना। बाकी खाने पीने के इंतजाम सारा मैं कुछ करूंगा, जो उसका टेस्ट होगा जिस तरह वो कमाना चाहेगा कारोबार से नौकरी से जो पेशा अख्तियार, उसमें खुद टेस्ट हर आदमी का टेस्ट डिफरेंट होता है। अगर मुझे जबरदस्ती बनाया जाता है आप डॉक्टर में कभी ना बनता, कभी ना बनता, कोशिश की बनने की बहुत जबरदस्ती की ये बन जाऊं वो बन जाऊं फला कर जाऊं, हजारों किस्म से कहानी की है पोस्टों पर बहुत गया हूं मैं, ऐसे स्लिप ड्रोन फिर नीचे कोई सूट ही नहीं करता था जॉब, जो सूट किया तो मुझे ये कि मैं और आप बढ़ के अल्लाह का जिक्र करें ये सूट करिए 50 सालों का बड़ा मुतमिन अलहमदिल्ला काम सही मिल गया, वो डिग्री फाड़ दी सारी जितनी भी थी, तो असल मेरी जो तैनत थी ना जो असल ये रूह में जो चीज थी ये थी कि काम तेरा ये है हकीकत में, हम मशहूर से इस काम को पकड़ लेता क्योंकि हम तो गलत कर वही दायरे से निकले हुए थे ना। हर इंसान के नेचर में अल्लाह पाक ने रखा है, लेकिन दूसरे को देख के नहीं यार इसमें ज्यादा पैसा कमा रहा है मैं भी ये करूं, ये भी तो हो जाता ना यार ये काम मैं अपने बेटे को ये बनाऊं, उसको बनाने के लिए कोशिश करता है, बेटे के अंदर गट्स कुछ और होते हैं उसमें कन्फ्लिक्ट होता है, वो इधर के रहता है ना उधर के रहता है, तो क्यों अल्लाह पाक हर चीज का जामिन है, पता है कि भाई इस मखलूक को मैंने इस आदमी को इस तरीके से मैंने चलाना है, इसको इस तरीके से चलाना है, इसे फोर्स करने की जरूरत नहीं, टेस्ट इंसान का अपना अपना होता है, बन गया जबरदस्ती माँ बाप ने कर दिया उसको नहीं तूने करना है, उसका टेस्ट भी नहीं है, जबरदस्ती बन दिया आखिर पर फेल हो जाएगा, ऐसी जगह फेल होगा तो आपको तसव्वुर भी नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ। तो बात ये समझ आती है कि कलमे का दूसरा जो रुख है वो कि इंसान की मोमिन की जिंदगी सारी दायरा ला इलाहा इल्ला अल्लाह के अहकाम को पकड़ के गुजारने है, जिसको हमने तस्लीम किया है कि सब कुछ हमारा वही है। समझ आ गई कितनी अच्छी बात है, देखें ये आदमी सब कर ले नुकसान है इसमें, हल्की हो जाती जिंदगी, पता नहीं क्यों नहीं करते हम लोग, देखें कितने बेवकूफ है। उसके बाद महमदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु फरमा और आसान मैंने ये कर दिया, अल्लाह पाक फरमाते हैं इस कलमे के अंदर ही तो मेरे अकाम आएंगे, शायद तुम ना समझ सको या बहाने बनाओ, तो फिर मैंने एक अपने ऐसी जात को जो सबसे महबूब है पूरी कायनात में और भी भेजूंगा, लेकिन ऐसा नहीं भेज सकता मैं जैसा अब भेज रहा हूं, आखिर किताबें बहुत दूंगा लेकिन ऐसी किताब नहीं दूंगा जो तुम्हें दी जा रही है, और ऐसे दूंगा कि हमारे सीनों में उतर जाएगी वो किताब, बिल्कुल उतर जाए फर जाओगे किताब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अमल के लिए इतना आसान कर दूंगा कि अल्लाह के नबी इसमें खुद पर्सनली बताएंगे, 1,24,000 अपने शागिर्द पैदा करेंगे उनको बताएंगे, फिर उनके शागिर्द पैदा होंगे ताबीन तबा ताबीन, फिर ऐसी शख्सियत को पैदा करूंगा जिसको और भी आसान कर देंगे, इमाम मालिक इमाम शाफी इमाम हम्बल अबू हनीफा और भी आसान फरमा देंगे। इसके बाद भी अगर तुम अमल नहीं करोगे तो कितनी बदकिस्मती में बताएं, फिर भी हम कहें कितने लिखे है जी उसे कहते हैं ये करें, कहां लिखा है जी पर्दा करे औरत, कहां लिखा है जी आदमी ये करे, कहां लिखा है जी नमाज मस्जिद में जाके पढ़े, कितने लिखे ये नहीं समझ कितने क्या क्या समझा, अब इतनी अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने डिटेल से तुम्हें दे दिया, लेकिन जब हमने मानी नहीं बात करनी नहीं, बस ये कोशिश करते बस ये बड़ा तो दुआ करें नमाज पढ़ें, फिर तो अपने बच्चों को नहीं जी बस कोशिश करें इंशाल्लाह कोशिश हम भी करें आप दुआ है ये आज हमारे खुद ही पागल कितने 10 साल 5 साल के बाद तुझे वापस जाएगा क्या हाल क्या होगा, क्या हाल होगा कोई कलमे के साथ हमारा कोई ताल्लुक था, किस तरह सोच सकते हैं कि भाई हम अपनी मर्जी का दिए, जब आया देखें फौजी भाई बस जोर पे आ गए तो दिल क्या जोर पे आ गए, ठीक है, असर पे नहीं, दिल क्या नहीं आ रहे, आई ने पिछा ईशा हो गया, चलो खान घर ही पड़, यानी कोई सिस्टम ही नहीं, कलमे से साथ कोई ताल्लुक ही नहीं हुआ। कलमे से ताल्लुक जो है वो ये है कि अल्लाह ताला के अहकाम को मानना, तक स्टेज बताया जा रहा ना कलमे, बड़ा तो अल्लाह ने खुद ही दिया हमें, उसमें क्या तीर मारे हमने, कौन सी कुर्बानी मारी, असल तो ये इम्तहान है मारा। अल्लाह ने कहा पांच वक्त नमाज जमात के साथ, औरत अफजल वक्त में, बस इतना उसने एक कानून बना दिया। फिर उसने मिसालें दे दी कि किस तरह सहाबा कराम ने कुर्बानियां दी नमाज के लिए, कैसे कैसे उठ के गए नमाज, है ना, नहीं वापस वो सुनते, किस तक मोहब्बत दी अल्लाह के नबी, किस तरह नमाजें पढ़ते थे, ख्वातीन के देखें आयशा सिद्दीका की नमाज कैसी थी, फातिमा की नमाज कैसी थी, लिखते जिगर रसूल सल्लम अंदाजा लगाएंगे, इससे बड़ी कोई कायनात में मिसाल नहीं मिलती, शहजादी और उनके साथ मामलात कैसे, अल्लाह हुआ कि एक ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं थी जिसके बैठ के मुसल्ले पे नमाज पढ़ सके, सत्र को ढाप सके, इस हालत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे सामने कांस दिखाया कि इस हालत में देखें उसने नमाज को नहीं छोड़ा, नमाज को नहीं छोड़ा, ऐसे ऐसे वाकयात। आज के मुसलमान जो है औरतें छोटी सी बात नमाज क्या आएगी, बढ़ने की और अक्सर कजा हो जाती है नमाज, ओ मेरी नमाज, ओ मेरी नमाज, वो मगरिब का टाइम हो रहा तो कौन सी पढ़ने असर किया, अल्लाह हू अकबर, क्योंकि कलमे से ताल्लुक नहीं है, हमारा मजाक है। सोचिए हमारे घर, हमारे बाहर, हमारे अंदर, मुझे दिखाएं कहां हमारा कलमे के साथ ताल्लुक है, जो पढ़ा है हमने वो हमने तो नहीं पढ़ा, तो अल्लाह के फजल से हमें मिल गया है, बगैर मेहनत के मिल गया, कोई कोशिश नहीं वाली, कोई जिसमें क्या तीन मान ली, हमसे तो ज्यादा मेहनत वो करता है जो रिवर्ट होता है बेचारा, आज काफी चीज छोड़ के आता है, किसी रिवर्ट से पूछे आप कि कितनी कुर्बानी जिंदगी दे के आते हैं बेचारे, उनके रिश्तेदार सारे उड़ गए, सब पीटर शीटर जॉन सब गायब हो जाते हैं बेचारे, नाने मामू चाचे सब खत्म, अकेला तना थाना खड़ा होता है बेचारा, हम फिर भी उसके सामने बहुत भादर होते हैं कि हम क्यों, हम पैदाइशी मुसलमान हैं, हम सारे जानते हैं, हालांकि हम तो उसके जूती के खाक के बराबर भी नहीं है, उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, उनके लिए नाम में दो ही नाम रखे अल्लाह पाक ने, जो एक मजहब को छोड़ के दूसरे दो मजहबों के नाम दूंगा, ईसाई मजहब का भी मिलता है और हम इस्लाम का भी मिलता है उसको, ऐसा तो नहीं है, कुर्बानी दी इसने हमें, तो अल्लाह ने मुफ्त दे दी, हमारी कुर्बानी क्या है कि रोज सुबह से लेकर शाम तक हमने खिलाफी करना है कलमे के, भैया मना किए अल्लाह पाक ने, ऐसा ना करो, अरे क्या बात, जमाना है दुनिया अब रहना है या भाई दुनिया में रहना नहीं रहना, हद तक तीन चार गए तो घर से निकाल देंगे, पागल हो गए तो कड्डो बाबा जी नुकर तंग करते रहते हैं, अपने जमाने तो गुजार लिया आराम से, हमारी बारी है तो जनाब देखें इनको क्या है, आखिर बिचार कहिए इसके बस अलग करो, यहाँ होम है क्या होता है उसमें भेज दो इसको, फर्क करो उसको, बहुत घरों के मैं दिखाता हूँ, एक बहन कहीं है, दूसरी बहन कहीं है, माँ कहीं है, बाप कहीं है, आम स्त्री है, मुसलमानों की बात कर रहा हूं, क्यों दायरे से निकल गए, दायरे से निकल गए, वादा करें अपने आप कि तबाही बर्बादी है, बर्बादी बिल्कुल बर्बादी है, हमारी जिंदगी जो है वीरान बैरन हो जाती है जिस वक्त हम कलमे से निकल जाते हैं बाहर, पता किसी को देखना नहीं चाहिए हमें कि ये मेरा बच्चा है, मेरी बेटी, मेरा भाई, ये कलमे से निकल रहा है बाहर, अल्लाह के अहकाम से बिल्कुल बाहर निकल रही है, दुआएं करें, रोएं, समझाएं कि अल्लाह वास्ते ऐसा ना करो, हमारी बहू, हमारी बेटी, हमारा घर, हमारा बाहर बिल्कुल बेकार हो गया कलमे के बाहर, और उसके अलावा ड्रामे बहुत बना लिए हमने मजहब के, मजहब के इतने ड्रामे बना लिए कि बस दावे हुए नहीं, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बिल्कुल तो मुजाकर है भाई, मैं कोई वो तो नहीं ना बैठा आपको समझा रहा हूँ, खुद अपने रोने के हम हाल हमारे क्या है पड़ी, मैं आपको सुना रहा हूँ जो समझ में आ रही है बात आपको सामने तफसीर हो रही। तो जन्नत पहले तो अल्लाह ने हमें दे दिया खड़े, दूसरी चीज़ क्या है, अब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ नहीं हम कहें ठीक है, तो बहुत बड़ी गाइडेंस मिल रही, पर एक आदमी की तो गाइडेंस हम मान जाते हैं, एक आदमी मिल रही आपको कहती क्या बात है, कहती फलां जगह दुकान ले, कहते यहाँ ना लेना, मैंने देखा है जनाब ये जगह बहुत गंदी है और आपको पैसे जाया जाएंगे, ये आपकी दुकान नहीं चली, अच्छा तो हाँ मैंने कहा साथ में जी दुकान थी, मैंने दुकान को खरीदी, आप लेंगे नुकसान में जाएंगे, बात मान लिया आपने, क्यों कहते नहीं यार इस आदमी का तजर्बा ऐसे का दुकान ना लेना, आप डबल माइंड हो जाएंगे, पैसे देते वापिस आ जाएंगे, नहीं यार मैं फंसी ना जाऊँ, है ना। एक आदमी गाइड किया, रब कलीम गाइड कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, ये काम मत कर तबाह हो जाएगा, वही हम काम करते हैं, ऐसी चीज ना करना, वही हम काम कर देते हैं, उधर उसकी गाइडेंस से बासूरत अल्लाह वाकुर कुरान और सुन्नत रसूल सल्लम की दो गाइडेंस दे रहे हैं, इतनी बड़ी कितने बड़े रहबर हैं हमारे अल्लाह वाकुर, सोचें चलो हमें तो कुछ जरूरत ही नहीं है, एक एक स्टेप पे सांस निकलने और तरीका का बता दिया, कोई मजहब कोई ऐसी चीज है मुझे बताएगा, वो हमें यही होता है कि टॉयलेट के अंदर जाके बैठना कैसे, वॉश कैसे करना है, अगर आप देखें उसको आज साइंटिफिक तरीके से देखें तो इतनी बीमारी इस चीज से पैदा होती है अगर इंसान सही वॉश ना करे टॉयलेट के अंदर जाके। देखिए सुभान अल्लाह, ऐसा तरीका बता दिया, पाक करने का तरीका बता दिया इंसान को कि लाखों बीमारी खत्म हो जाती है उससे, यानी इसमें अल्लाह ताला ने जो गाइडेंस दी दुनिया और आखिर दोनों सिक्योर करता है हमारे, कि वो अल्लाह ताला हमें देखना चाहते हैं सेहतमंद रहे सही रहे, जिस जो जॉब मैंने इसको दिया है खाने पकाने का, खाने और जो इसका कमाने का, उसमें ठीक ठाक काम करे अपना, ये भी तो चाहते हैं ना वो, और हमेशा इंसान जो जिंदगी में धैर्य तक रहे, आप देखें ऐसे लोग हैं जो 80 साल तक भी अपनी दुकान पर खड़े रहे काम करते रहे, हमारे इनके पड़ोस मौलाना रहीम साहब के वालिद साहब 70 साल से आए दुकान चलाते थे अपने माशा, जो दायरे के अंदर थे ना बिल्कुल नहीं थके, आपकी नमाजें बिल्कुल मस्जिद पढ़ते सब कुछ था उन्होंने, तो भाई ये चीज हमारे पास जो गाइडेंस है, दूसरी चीज क्या है कि पूरी जिंदगी का माहौल हमारा जो होना चाहिए दायर होना चाहिए किस तरह ला इलाहा मुहम्मद रसूल नबी की सुन्नत के मुताबिक शरीयत के मुताबिक पूरी जिंदगी हो, खाना पीना उठना चलना सब कुछ बिल्कुल, किसी को पता नहीं आता, बहुत से लोगों को पता होगा सोने का तरीका क्या है, सुबह उठने का तरीका क्या है, टॉयलेट में जाने का तरीका क्या है, इसको हम दीन ही समझते और अल्लाह का गाइड कर रहे हैं। आज जो 90% जीने चिपटते हैं ना उस वक्त चिपटते हैं जब इंसान टॉयलेट में दाखिल होता है, 90% घर में जो लड़ाई होती है ना मेरी खुद आंखों से देखा है, उस वक्त होती है कि जब आदमी बगैर उस अदब के अपने घर में दाखिल होता है जो अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत का बताया, अगर वो हो जाए तो 90% बल्कि 99 समझ लें आप, घरों में कभी लड़ाई ना हो, तलाक ना हो, दुश्मनी ना हो, मोहब्बत ही हो, उस तरीके से अंदर दाखिल हो जाए जो गाइडेंस अल्लाह के नबी ने बताया कि तुम जब घर जाओ, कितना करम है कि कैसी कितनी बड़ी गाइडेंस है कि जब तुम घर जाओ इस तरह जाना जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब तुम जाते हो तुम नहीं देखते, मैं देखता हूं कि तुम्हारे साथ शैतान जाते हैं, जिन्नात अंदर जाते हैं, लेकिन तुमने अगर ये कलमे पढ़ लिए इस अदब के साथ जाकर तुमने गए अंदर जाकर सलाम किया तो जो शैतान तुम्हारे साथ जाने वाले थे वो बिल्कुल वहीं तबाह हो जाते हैं, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। इस आजिज फकीर ने देखी है ये बात, मैं आपको सही बता रहा हूं, ही अंदर घुस ही नहीं सकता, घुस ही नहीं सकता उस दुआ के बाद, चक्रे माना शुक्र देते बार अगर अंदर आ जाए तो फान हो जाते हैं, आपके खाने के साथ आ जाएंगे, आप हम अपनी बीवी के साथ सोएंगे रात को, आपके साथ हम बिस्तरी करेंगे उसके साथ, फिर जो औलाद पैदा होगी पूरी शैतान पैदा होगी, क्योंकि हमने एक बात नहीं मानी, दायरे से बाहर निकल गया, इसको मामूली बात समझते हैं, सीटी मारते अंदर चले जाओ पता नहीं क्या करते हैं, गाली देते चले जाओ पूछते कुछ पता नहीं, सर हो जाते अंदर जा रहे हैं दरवाजे खोल ठक मारा, इतनी बड़ी गाइडेंस मिल रही है, इतना बड़ा प्रोटेक्शन हमें मिल रहा है, चले वादा करें कि इंशाल्लाह ये तरीके सुन्नत के हम सीखेंगे, सीखेंगे भाई ये दीन है, अगर हम ये चीज सीख ली आखिरत में हर आदमी आलम उठेगा, जरूरी नहीं आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा दारुल उलूम के सर्टिफिकेट लेके आओ, नहीं इन्होंने इल्म सीखा है, मेरे हबीब की सुन्नतों को सीखा है, इसने सोने का तरीका सीखा, इसने खाने का तरीका सीखा, इसने विस्तार खाना खाया, इस किसी अंदर दाखिल किया, ये तो आलिम बामल है, आलिम बामल उठेगा वो शख्स, एक किताब सुन्नत की आप ले लें जिसमें लिखा हुआ खाने का तरीका, सोने का तरीका, पहनने का तरीका, उसको जब भी सुबह जरूरी याद नहीं और कोई बात नहीं, जैसे आप सोने जा रहे हैं किताब को देखें, हाँ जी बस पढ़े आप सो गए, कब कपड़े उतारते हैं उसका तरीका, और हर पे इनाम कितना है उस तरीके पे आपने कपड़े उतार लिए और दुआ मांग ली, अल्लाह ताला कहते हैं जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं, सारे गुनाह माफ कर दे, याद है किसी को दो को तरीका पता है हमें नाखून काटने कितने आखिर में हम जाके देखेंगे कि कैसे कैसे अमालों को हमने छोड़ के वक्त जाया किया जबकि मुश्किल था। अब यूं ही काट सकते हैं ना, कौन यूं भी काट सकते हैं, कोई यूं काट रहा है, जो तरीका अल्लाह के नबी ने बताया उस तरह काट रहे हैं। किताबें नहीं सुनत की, बहुत अच्छी प्यारी प्यारी किताबें मिलती हैं सारे खाने की उठने की पहनने की, क्योंकि हम इसमें ये इलम है, और ये इलम आपने फिर अपने बच्चों को सिखा दिया, आप आलिम बामल हो जाएंगे, ये आलिम उठेंगे हम आखिर। ये तो है सारी हदीसों में, तो सारे हदीसें उठा के देखना, उन्होंने बाप बांधे, लिबास के बाप बांधे हैं, वजू के बाप बांधे, सब है ही नहीं बुखारी और सब सारी है ही, एक्सपेंशन है ये ये है सारा, और क्या है इसमें, और इलम है क्या मुझे बताएं। इलम नाम किसका, इलम नाम इसका है कि जो तरीके हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि इस तरह आप जिंदगी गुजारने दायरे में रहें, उस तरीके का नाम इलम है। बस आलिम बन जाएंगे बुढ़ापे में, अगर आलिम बन गए तो और क्या रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को पता नहीं कोई इतनी रख रहा है, उतनी रख रहा है, कोई इधर से काट रहा है, कभी खेलते रहते हैं हम लोग, सीधा तरीका बताओ दायरा इस्लाम में क्या था, क्या है इसका स्टाइल, क्या है ना रखने की क्या सजा है, रखने की क्या सजा है, इसकी हद कितनी है, इसको रंगना कैसा है, पूरा सब चीज बताइए। तो उसको नहीं देखना, अपनी मर्जी से चले यार, कोई इधर रख लेता है, कोई उधर रख लेता है, कोई रख लेता है, नाम करते हैं हम हटे, बस कुछ समझा ही नहीं सकता बता ही नहीं सकता, खुद अपने वजूद का नहीं पता कि हमारे ये बाल कैसे रखने हैं, बाल काटने कैसे हैं, हम शक्ल हम बनानी कैसी है, हम अपने वजूद को ही सही करते, कुछ सुराख कर रहा है, कुछ सुराख कर रहा है, कोई ये पहन रहा है, कोई फला पहन रहा है, कोई भी पता नहीं क्या इंसान बन गया, देखिए वो है कौन, अल्लाह जिनको कलमा मुफ्त मिल गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, अल्लाह ताला कह रहा है कोई नहीं इंसान दाखिल हो सकता जब तक दूसरे शक कलमे का जो है उस पर इंसान अपनी जिंदगी नहीं गुजारेगा। आंख खोल के सुन, ये बात ये नहीं कि एक चीज हमने ले ली बस इबादत ले ली है वो भी तो हम समझे, नहीं पूरी जिंदगी की दायरा इस्लाम है, और जिस वक्त ये लता कर जिस वक्त ये बात समझ आ जाए, पिछली जिंदगी उसने जाया कर दी, बाकी रहेंगी उसकी 30, मैंने उसको दी थी 50, 30 गुजार दी, बाकी कितने रह गए 20, तो अगर 20 में भी आकर उसकी बात समझा दी, किसी ऐसी मस्जिद में चला गया समझा दी और उसने कहा इंशाल्लाह आज से करूंगा, तो 30 भी उसी जिंदगी में डाल दे, इसलिए समझा रहा ला ये बात। और क्या मैं ये जो हदीस बिल्कुल नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ऐसे ही खोलता हूँ हदीस निकलाती, जो हदीस पढ़ता है टक से होता है दिल पे, मैं कहता हूँ यार इसी बात करते हैं ठंड से होता है दिल पे लग जाती है, ये इसी से बात करें, वो बात शुरू हो जाती। बहुत से लोग कहते हैं ये तो हजरत साहब हमें बता रहे थे, तो मेरे लिए उतरी थी, हर आदमी समझता है, मैं कहूँ तुझे नहीं बात, तो लड़ने लगते हैं बेचारे कि मुझे कहा था तुम नाराज हो गए मुझसे, फला हो गए मैंने ये किया ही नहीं, और ये तो मेरे बारे में कहा, हालांकि कोई बात भी नहीं मेरे में, इस्लाह हो रही है सबके अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को खुशखबरी मिल रही है, किसी को डंडे पड़ रहे हैं, किसी को उठाया जा रहा है, तो गलत है, सबको समझ लेना है बाकी ये मेरे लिए है, हाँ मैं सबके लिए हूँ मैं तो सबके लिए पैगाम लेके आता हूँ, जो समझे उसको कबूल करे, कल की ये महफिल आपसे पूछी जाएगी पढ़ा जाएगा ठीक। मैं जानता हूँ कि थोड़ी हमारी मजलिस लंबी हो जाती है, लेकिन भाई लंबी होगी क्या नुकसान है, इतनी देर में आपको मस्जिद में बिठा लिया, अल्लाह के जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तक ये लंबी हो रही है, तो कम से कम दोजख से तो निकले जन्नत में बैठे अच्छा नहीं, कल शुक्रिया करेंगे मेरे, मैं तो कहूँ 3 घंटे शायद कर दूँ उसको, अच्छा है इसका 2 घंटे थोड़े हैं अभी, याद करेंगे अभी कहाँ मिलते हैं वक्त, खुदा की कसम किसकी नौबत है इस आज के इस मादी दौर के अंदर कि 2 घंटे बैठ के हम एक दूसरे को देखते रहे और अल्लाह रसूल की बातें करते रहे, मुझे दिखाएं कहाँ मिलती हैं चीजें आज के मौजूदा दौर में, कितने हमारे, मैं सोचता था कि अल्लाह ताला तेरा क्या खूबसूरत तेरा जिक्र है कि तूने जिक्र से, मैं वहां सोचता था जब मुझे हुक्म दिया गया था, मैं कह अल्लाह वहां पे किस तरह लोग बैठ के जिक्र करेंगे, इस्लामी मुल्क के अंदर वो बैठ नहीं सकते, मैं वो मुझे मेरे शेख कहते हैं वहां जिक्र कर रहा हूं, मैं कह ये अजीब बात है। तो आज सुबह मेरे जहन में ख्याल बहुत रोया, मैं कोई जमात आई से बात कर रहा था कि यार कमाल है देखे कि कितनी जमात सुबह के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फजर से लेके इशराक तक किस शौक के साथ लोग लेके तेरा नाम ले रहे होते हैं, इस मुल्क में कारोबारी लोग, दुकानदार लोग, घड़ी देख रहे थे दुकान, बस 5-2 मिनट पहले जाएंगे दुकान पे, और क्या कर रहे हैं फजर पढ़ने के बाद یعنی ایک ایسی عبادت کر رہے ہیں جس کو دنیا فضول سمجھتی ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے مقبول عبادت ہے. سوچ سکتا ہے کہ اب ہم کرنا شروع کر دیا نا تو ہم تو کچھ نہیں سمجھ رہے, لیکن خدا کی قسم باہر سے لوگ آتے ہیں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, دیکھ کہ یہ کیسے لوگ ہیں یار, اتنی دیر کس طرح مسجد میں بیٹھے ہیں فجر کے بعد, بھاگتے دیکھے آپ ان لوگوں کو ہاں کس طرح بھاگتے ہیں, ادھر سے ادھر نکل جاتے ہیں سن چھوڑ کے نکل جاتے ہیں سب. بخول لوگوں کی بڑی خشک چیز ہے بیٹھ کے ذکر کرنا, یار کیا ہے میرا آنکھ بند کی یہ کریں, اور میں دیکھوں یار 40-50 آدمی, اور پھر اگر کاؤنٹ کرو اس وقت کوچنے کر رہے ہیں تو ہر روز جو ویوز آتے ہیں 300-400 آدمی باہر کر رہے ہوتے ہیں ذکر. کیا شان اس کی ذکر ہے, پتہ ہی چلتا ہے کہ بندہ تھوڑا جاگ جائے تو اللہ کی رحمتیں کھل جاتی ہیں. ملک کو شکر نہیں ہے تو ہم نے بنایا بکواس بازی, کوئی کچھ نہیں کہتا, سب اس کا الحمد للہ سمجھ نہیں, کیا منع کرنا, آرام سے مذہب ہمارا ایسا پیسفل اور پورا من مذہب ہے جی, تکلیف ہی کسی کو نہیں دیتا, کچھ کہتے ہیں ہمیں کیا, کتنے اچھے اچھے کونے دیے ہیں الحمد للہ, کیسے ویران پڑے ہوتے ہیں صبح بتاؤ, کیسی پیاری پیاری مسجد ہیں الحمد للہ, فوراً ویران پڑی اتنی شراک تو کوئی بھی نہیں ہوتا. میں آپ کیا بتاؤں کہ جی بات بتا دوں میں چھوڑیں, تو یہ اللہ آباد کرتے ہیں, ہماری خانقاہ ہے بیڈ روم تھی تو کچھ لوگ بیٹھے وہاں, آتے ہی کوئی نہیں تھا اشراق پر, بیٹھتے ایک دو آدمی تھے تو ایک دفعہ ایک شخص بیٹھا تھا, میں کہا تھا کہ آپ کو دیکھا, اس نے دیکھا کہ مسجد کے چاروں طرف سے تسبیحوں کی آوازیں شروع ہو گئی جیسے ہم کرتے ہیں اللہ اللہ, وہ ڈر گیا. اس نے مجھے فون کیا کہ حضرت یہ تو آوازیں آ رہی ہیں پوری مسجد کے اندر سے اللہ کی تسبیح, اللہ 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 کون, میں کہا تم جو نہیں کرتے تو اللہ نے فرشتے بھیج دیے, گھر تو اس کے وہ خالی چھوڑے گا, آتی تھی آواز, میں کہا چپ سنا تم ڈسٹرب نہ ہو, تو وہی کہنا بیٹھا آرام سے کیا تکلیف ہے, کرتا ہے ذکر کوئی کرنے کا ذکر کرتا ہے, تو خالی نہیں ہوتی جگہ, خالی ہم جیسے جانوروں سے ہوتی ہے, اللہ ان جگہوں کو فل کر دیتے ہیں فرشتوں کے ساتھ, مخلوق آ جاتی جنات آ جاتے ہیں جو مہمان ہے, تصویر باقاعدہ لوگوں نے سنی ہے آواز ٹیپ کیوں نہیں, ایک جگہ پوری مسجد گھومتی تھی اللہ کے ذکر سے, اور جو بنے ہی آواز خان کا تو بنتے ہی ذکر کے لیے, اللہ اس کو کیسے چھوڑ دے گا بغیر ذکر. بھائیو یہ تو نور ہے, نور جس گھر میں ذکر ہوتا ہے آسمان والوں کو چمکتا چاند اور سورج کی طرح نظر آتا ہے, گھروں میں اللہ کا ذکر کرائیں, دعوت دیں آپ کے گھروں میں آ کے ذکر کراؤں گا انشاءاللہ, اور کیا وہاں مراقبت کرائیں, کبھی مجھے کھینچنا نہ شروع کر دینا. بہت بڑا فضل ہے آپ کے گھر میں ایک مراقبہ ہو جائے, سبحان اللہ کیا بن گیا ہوگا, سارے جناشنا سب بھاگ جائیں اس مراقبے سے بیٹھ کے بات کریں, ساری زمین آسمان ذکر کرتا ہے بیٹھ کے اوپر سے نیچے تک. نہیں مصیبت تو یہ ہے نا, دستور ایسا ہے کہ اگر مراقبہ ہو جاؤ تو کھانے پلاؤ اور یہ شروع ہو جاتے, اللہ کا ذکر کرو چھٹی کرو پھر چائے پانی کیا ہوتا ہے, سب سے بڑا چائے پانی ہوگا کس طرح ختم ہوگا, تو یہ بہت بڑی چیز ہے, خود بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے آپ ذکر کریں, بچوں کو بتائیں اور بیٹھ کے مراقبہ جو ہے میرے دوست اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں, میں اس پہ تشریح کروں گا کہ کیا چیز ہے, عجیب بات پر مجھے پچھلی رات آئی ہے, اس پہ میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ کہ کیا چیز ہے مراقبہ. تو یہ میں کہہ رہا تھا کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے بھائی, کہ جب میں دیکھا کہ خیال ہے کہ وہ کیا رہا ہے, اتنی جماعت میں چلا تھا تو ایک ہی آدمی بھی نہیں تھا, وہ کہاں اس ہوٹل کے اندر یہ 50-60 آدمی بیٹھے رہے, گردن جھکائے اللہ کو یاد کر رہے ہیں شراک تک آرام سے, بڑے آرام سے اپنے کاموں میں جا رہے ہیں, کوئی معمولی بات ہے, مشکل کچھ بھی نہیں ہے. آج ہم وعدہ کرنے کے دائرہ اسلام, ہم نے دائرہ لا الہ الا اللہ میں رہنا ہے, اس کے علاوہ ہم جائیں گے جب بھی گائیڈنس لیں گے کس سے لیں گے, اللہ کے قرآن سے لیں گے یا شریعت سے لیں گے, متقی ترین انسان بن جائے گا وہ شخص, اس سے سب سے بڑا عالم بن جائے گا وہ شخص, سب سے بڑا زہد بن جائے گا, عابد بن جائے گا, کئی درجے صدیق بن جائے گا, نبیین کے بعد جتنے درجے آتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کی زندگی جس نے آج گزاری جس مرد نے اور عورت نے اس درجے پہنچ جاتا. تو دوسرا درجہ عمل کا ہو گیا, اس چیز کے ساتھ چل رہے ہیں لا الہ الا اللہ, یہ گیان مفاتیح الجنہ, اتنی بڑی بات کہی ہے. تیسرا درجہ اسی میں, اب یہ جو رکاوٹیں ہیں ہمارے پاس, اب ہماری فائٹ ہے, ہم مومن ہو گئے, اللہ نے ہمیں سلپس دے دیا, امتحان شروع ہو گیا, اب کیا ادھر کیا دو دشمن دے دیے, کون سے نفس اور, اب شروع ہے مقابلہ. یونان جب بھی تو ملتا ہے نا محنت کرتے آدمی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کو صحیح کرتے ہیں. اب جتنا بھی کام چل رہا ہے نا یہ ہمیں روکا ہے اس نے, وہ رکاوٹیں پیدا کرنے والے کون ہیں؟ نفس و شیطان. ابھی آپ بیٹھے ہیں باہر نکلیں گے, اب وہ انجیکشن ڈالنا شروع کر دیا, کدھر ضروری ہے, وہ کیسے ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, فرض تو نہیں ہے, یہ تو نہیں, یہ کس نے کیا, اس نے, بس شیطان نکالے گا. آج جو رکے ہوئے ہیں ہم اور دائرے سے باہر نکل چکے ہیں, دائرے میں گھسنے, اس کی صاف وجہ کیا ہے؟ نفس اور شیطان. نہ حرام کو حرام بتانے دیتا ہے, نہ حلال کو حرام بتانے دیتا ہے, وہ قابو رکھتا ہے انسان کو بری طریقے سے, ہلنے نہیں دیتا نفس و شیطان. یہ اب ہمارے اس کے ساتھ فائٹ ہے. اب ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, وہ ہمارے اندر ہے, شیطان ہمارے رگوں میں گھوم رہا ہے سارا, تو اور ایک شیطان تو بالکل پیدا ہوتی ہے ہمارے ساتھ لگا دیا جاتا ہے, اور بعض شیطان تو ایسے ہوتے ہیں انسان مر جاتا ہے لیکن شیطان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کے قبر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے جب تک اس کو موت نہیں آتی. ایک شیطان بالکل ہمارے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ اس کے جیسے پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ انسان کے ساتھ چپکا دیا جاتا ہے, ہر وقت ساتھ ہے 24. یہ ہماری زندگی ہے. مجھے بتائیں کہ کتنا بڑا دشمن ہے ہمارا اور ہم نے چلنا ہے دین پہ. امتحان اللہ کا آسان تو نہیں نا, انعام کتنا بڑا اللہ پاک دے گا جب آخرت کا حشر کا میدان ہوگا, انبیاء صدیقین شہدا اور سب سے امام الانبیاء کھڑے ہوں گے, اس آدمی کو میں انعام دے رہا ہوں, سبحان اللہ, کم اعزاز ہوگا, اعزاز بہت بڑا ہے. یہ ہوا کہ شیطان نفس موجود, ایک شیطان پورا موجود, اس نے گردے میں چینیں ڈالی ہوئی ہیں ہمیں اور کیا چھوڑنا نہیں, اب ہمیں کیا کریں. یہی ہے جو گھسیڑتا ہے انسان کو دوزخ کی طرف, یہی انسان ہے جو قرآن کے دائرے سے باہر نکال لیتا ہے, عورتوں مردوں کو جو ختم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر علاج بھی اسی کلمے میں ہے, سبحان اللہ. اس کا علاج لڑنے کا, ان سے کس لڑ سکتے ہو؟ اللہ کہتا کوئی میں نے پورا انتظام دی ہے, وہ کیا علاج ہے؟ کہتے اسی کلمے میں کیا, ذکر اللہ, پڑھتا رہے اور کرتا رہے میرا ذکر اللہ ان شاء اللہ, تو شیطان دشمن سے تو لڑتا رہے گا اور کامیاب ہوتا رہے جب تک کثرت ذکر کرے گا, کیونکہ شیطان بھی کثرت سکھاتا آئے گا تیرے ساتھ, تو اس کے علاج بھی کیا ہوگا, کثرت ذکر ہوگا. جب تک تو اللہ کا ذکر کرتا رہے گا, اللہ کا ذکر کرتا رہے گا, انشاءاللہ فتح یاب تو ہی ہوگا آخری کے اندر. اب ہمارا نقصان کیا ہے, یہاں تک تو ہم پہنچ گئے, ہم سمجھ گئے کہ اب شیطان ہمیں قابو کرتا ہے. اب یہاں کامیابی کے وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جو آخری نقطہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے لیے سب کچھ بچنے کے لیے, دائرے میں واپس آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, ذکر اللہ کا سب سے. جو لوگ ذکر کو پکڑ لیتے ہیں الحمدللہ وہ پار ہو گئے, وہ نکلے, کیونکہ ذکر کے ساتھ اللہ نے وہ انعامات رکھے ہیں, وہ فوجیں رکھی ہیں جو اس کے مقابلے میں آتی ہیں انسان کے. الحمدللہ اتنے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں, شیطانوں کو ایسی تیسی کر دیتے ہیں, پورا انتظام کیا, لیکن اب مصیبت یہ پڑ گئی کہ لوگوں نے اللہ کا ذکر ہی چھوڑ دیا, سنتے ہی نہیں بات. واحد ایک علاج ہمارے پاس تھا دائرے میں رہنے کا, وہ کیا تھا, اس میں موت آ گئی, بس شیطان ہمیں جان نہیں دیتا, نہیں بس ٹھیک ہے جی, بات افسوس کی بات ہوتی ہے, کوئی اپنے اس چیز میں خوش ہے, کوئی اس چیز میں خوش ہے, نہیں ہم بھی یہ بھی دین کا کارن, ہم بھی یہ دین کا کرو, بیچ والا مسئلہ تو دیکھو جو اصل ہے کہ دائرے میں ہو بھی ہے نہیں ہے. مجھے پتا ہے یہ ذکر نہ ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا گناہ کب ہے, کون سا گناہ ہے, کیسے گناہ, کچھ پتہ نہیں چلتا آدمی کو, ڈپ ہوتا ہے بالکل, ایک گناہ کی بات کرتا ہوں. اور ذکر جو ہے اس گناہ, ذکر میں کیا ہے کہ ایک نور آتا ہے دل کے اندر, اللہ اس ذکر سے ایک نور پیدا کرتا ہے, اور نور جو ہے وہ اس کا کام کیا ہوتا ہے, وہ انسان کے اندر ڈیفینیٹ کرتا ہے, بالکل کلیئر کر دیتا ہے کہ حرام کیا چیز ہے, حلال کیا چیز ہے, بچنا کس سے ہے, تو چھوڑنا کس سے ہے. بہت شعور آنا شروع ہوتا ہے اس کے اندر, ایک سینس آنا شروع ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک نور ڈالنا شروع کر دیتا ہے, اور اس کو کھلبلی مچ جاتی ہے غلط کام پر, مطمئن نہیں ہوتا اس کام سے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں. یہ کس سے پیدا ہوتا ہے, ذکر اللہ سے, پھر وہ سمجھتا ہے, پھر اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے, پھر ذکر مدد کرتا ہے. اس لیے ہے کہ اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو کہ مرتے دم تک تمہاری زبان پہ ذکر ہی ہو. اتنی بڑی عبادت ہے, جو اتنی بڑی عبادت ہے آج یہ ہے کہ بالکل مت کرو, بالکل مت کرو, نام بھی اس کا نہ لو کسی مسجد کے اندر, اس مسجد کو پاک کر دو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, نکال دو, جڑ ختم کر دو اس کی. ہوا یہ نہیں ہوا. اور بڑے خوش, ہم نے بڑا دین کا کام ہو رہا ہے جی, بڑا یہ چل رہا ہے, بڑا وہ ہو رہا ہے, بہت خوش. جب یہ پردہ ہٹے گا دوستو, پھر پتہ چلے گا کیسے عذاب ہے اور کیسے ثواب ہے دنیا हमारी किससे दुश्मनी? ये तो एक ऐसी बातें हैं, ये तो ऐसी चीज है जो अंबिया के पैगाम है। इसमें गोश सारी चीजें बता रहा हूं, ये कोई दुश्मनी की बातें? लेकिन तो पाक कर दो मस्जिदें, एक साल को जड़ से निकाल दो। कुरान को आप ऐसे कहेंगे? कुरान क्या जिक्र नहीं अल्लाह का? हस्बुनल्लाह कहां से मिलता है? लाहौल्लाह कहां से मिलता है? सुभानल्लाह कहां से मिलता है? किस कौन सी लाइन किसके कलमात हैं? इसका मतलब कुरान को निकाल दो इसे, कुरान पढ़े ना कोई। कुरान ही हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? गीता पढ़ रहा हूं मैं, सब कुरान है। लाइल तस्म सुबह कोई कलमा ऐसे दिखा जो कुरान से बाहर है कुरान में? और फिर इससे बड़ा कुरान कौन सा होगा? अल्लाह। जब आंग अल्लाह कहते हैं, इससे बड़ा कुरान क्या होगा मुझे बताएं? वैसी कौमें पैदा हो जाएंगी मुझे बताएं, तो क्या हाल होगा? फिर ये अजाब नहीं आएंगे जो अब आ रहे हैं हमारे पे? अजाब नहीं आएंगे दोस्तों? आएंगे ना? फिक्र ना करो इंशाल्लाह, हिम्मत करें आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी जिंदगी को सही करें। आप सही होंगे अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह बस्ती की बस्ती सही होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह बड़े रहीम है, एक बस्ती में एक जिक्र वाला बैठ जाएगा ना, अल्लाह कहेगा जिक्र वाला आ गया, चलो इस बस्ती को भी इंशाल्लाह बस बख्श देता हूँ, उसके सदके से उनको भी निकालता चला जाएगा। हर मस्जिद में जाओ जहां लोग नहीं करते जिक्र, वहां मिनते करके जिक्र शुरू करो, वहां के चारों तरफ के अतराफ के नूर उतरना शुरू हो जाते हैं। एक एक फरिश्ता आसमान से उतरता है तो करोड़ों रहमतें लेके आता है, फरिश्ता नूरानी। तो जिस जहां इतने फरिश्ते उतरते हैं कि जमीन आसमान भर जाए, चप्पे रखने की जगह ना हो, उस बस्ती का हाल क्या होता होगा मुझे बताएं? अल्लाह की कितनी रहमतें उतरती होंगी। सिर्फ आप जिक्र करने वाले हैं तो आपकी वजह से, तो इतना इंपॉर्टेंट है जिक्र, जिसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि एंड यहां होगा कि अगर जिसने जिक्र कर लिया तो वो दायरे में चलता रहेगा अल्लाह के फजल से, वो दायरे से निकलेगा नहीं। और जाकिरीन की अल्लाह का गारंटी देता है जिक्र करने वाला अल्लाह पाक कि कामयाबी कामयाब होंगे लोग। कैसे? ये हदीस बताती है, मफातिहुल जन्ना। क्या खुना है उसके लिए? हाँ, मफाती है किसकी जमा? कुंजी नहीं, कुंजियां। यानी जब इंसान अल्लाह का जिक्र करना शुरू करता है तो वो खुद इंसान क्या बन जाता है कि जन्नत का दाखिला, तो अगर वो जन्नत की कुंजियां बन जाता है, जो जन्नत चाहेगा उसमें घूमता चला जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दर्जात है उसका। ये अल्लाह का जिक्र ऐसी चीज है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मफातिहुल जन्ना बन जाते हैं। छोटी चीज अल्लाह का जिक्र मुझे बताया, कोई पता नहीं है हमें सुबह का जिक्र, शाम का जिक्र, रात का जिक्र, दिन का जिक्र, ना मराग बात कुछ भी नहीं। तो मेरे भाइयों, अगर हमने आकत जन्नत में जाना है, जो इनाम हर आदमी हासिल करना चाहते हैं अल्लाह से, और हमारा मकसद भी सारी जिंदगी का ये है दोस्तों, क्यों कि दुनिया तो जो थी एक आजमाइश की जगह थी, थर्ड क्लास जगह थी, बीमारियाँ थी, कभी परेशानियाँ थी, कभी लड़ाइयाँ थी, कभी झगड़े थे, कभी रोटी नहीं थी, कभी वो नहीं था। इस तरह जिंदगी गुजारे ना सब आदमी, ऐसे गुजार रहे हैं मुझे पता है। बड़े से बड़ा बादशाह अपने काम में बैठा है, यार ये मुल्क में रहता फना हो गया, ये वो वजीर भाग गया, ये जासूसी सियासतदान अपने चक्कर में है, क्योंकि हम उनको देखते हैं, ये सब कुछ है, उनको जाकर देखे तो मातम कर रहे होते रात को बैठ के। हर आदमी की दुनिया है, हर आदमी परेशान है। तो क्या आप कुछ सोचें कि सेंस बनता है जो यहाँ की जिंदगी वो भी परेशान, और फिर उधर जाए तो उससे भी ज्यादा परेशान? कम से कम यहाँ अगर हम परेशान है तो ऐसी जिंदगी तो बना लें वहां जाके सीधी जन्नत में चले जाए। किस तरह दोनों जगह आप परेशान हैं, वहां की तो भी दायम ही होगी, यहाँ तो एक सहारा है इंशाल्लाह, कोई अच्छा काम कर लें तो जन्नत मिल जाए, लेकिन वो भी जाया कर रहे हैं। क्या हमें 50, 60, 70, 30, 50 जितने हम जिंदगी वाले बैठे हैं, मुझे कोई लिख के बता देगा हमें एक घड़ी हमें ऐसी नसीब हुई जो जिसमें मजा लिया हो? और यहाँ का हर मजा चंद सेकंड का है। सुबह से लगते हैं आज हलवा बनेगा, हलवा बना रहे हैं, ये डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, उसमें हलवा बन रहे, हलवा बन रहा है, बन के आ गया, 3 मिनट में लगता है दुकान के गया अंदर गायब, फिर इंतजार निकालो उसको, क्या सिस्टम। देखिए एक देखा इसका शॉपिंग कर रहा था बेचारा, आया तो एक हाथ में उसके टॉयलेट रोल थे और एक हाथ में ब्रेड वगैरह थी, मैं सुबह अल्लाह खाने के इंतजाम भी निकालने के इंतजाम देखता रहा मैं, सही बात मैं देखा एकदम दिमाग में लगेगा क्या कोई इंतजाम हो रहा है, इधर हलवा बनेगा घीसी है, उधर से टॉयलेट का रोल लिए जा रहे हैं, सब निकलने के साथ एक ही आदमी कर रहे हैं। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ है, ये ट्रुथनेस ऑफ द वर्ल्ड है, हमारे सामने बताया जा रहा है कि तुम हो तो ये इसी चक्कर में सारी जिंदगी गुजार रहे हो, ये लाइफ है। हर मजा देखना जितना मजेदार चीज होगी ना वो सेकंड की होगी, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, उसको बढ़ाने की बहुत कोशिश करते हैं आदमी लेकिन बढ़ता नहीं है, मजा खत्म ठंडे। और वहां क्या है, हाय सुभान अल्लाह, जहां जाना है उसको जाया कर रहे हैं हम, कि मजे की बात तो कर, जब तक तू जाएगा मजा रहेगा और जैसा जाएगा वैसे रहेगा। इस पर इंशाल्लाह मैं मराक में बात करूंगा तो आपको बताऊंगा कि जन्नत के मजे कैसे हैं और किस तरह और कैसे मिलेंगे आपको। मुझे याद आना इंशाल्लाह आप अशश कर जाएंगे जिक्र करने वाले लोग, यार क्या हम काम कर रहे हैं, अल्लाह हमसे क्या काम करा रहे हैं। एक अजीब अंदाज से मैं आपको इसके इनाम बताऊंगा, देखें क्या इनाम है इसके मुराकबे। याद रहा मुझे इंशाल्लाह, तकली नहीं सच्ची जुमेरात की ताकि ज्यादा लोग सुन। अभी तो आस्था टहलते आ रहा है, अभी आ रहा है, कुछ शाम को आ रहा है, जब ऐसे हाजी साहब और मैं बैठे थे तो एक दूसरे को देखते रहते हैं, ये क्यों नहीं जिक्र करने वाले अल्लाह के बंदो। अब जो मैंने बेनिफिट बताए हैं आपको जिक्र के कि जायज देते हैं हमें, क्यों हाजी साहब जायज देते है? नहीं, वो पहले आ रहा कुछ, एक तो अभी आ रहा है, क्या जिक्र भी जा रहा है, ऐसे जाते हैं शेख की बातों को सुनने ही नहीं, वो लंबी नजर आती है, वक्त जया हो रहा है और ऐसी बातें मिलनी ही नहीं। मैं आपको गंट कहता हूं आज जो बातें हुई हैं इसमें कितनी कितनी चीजें निकली हैं। तो ये जिक्र जो मैं आपको बता रहा हूं हमें इतना ढकोसला देता है कि हमें जिक्र के बगैर इंसान को गुनाहों का पता नहीं चलता, याद रखें बिल्कुल नहीं पता मैं गुनाह कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। मैं एक बात करता हूं आपसे, गुनाह की गीबत से कौन बचा हुआ है, मां सिवा अल्लाह का जिक्र करने वाला सच्चा, उसमें शऊर पैदा हो जाता है ये गुनाह है। आप कर रहे हैं ना मेहनत इस पे, हैं? ये भी सदका है देख रहे हैं इन्हीं बातों को जो मैं आपको सुना रहा हूं। ना दुनिया के अंदर किसी को एहसास ही नहीं है गीबत का, गीबत क्या चीज है, गीबत की सजा क्या है। आखिरत के अंदर सजा यह है कि जो इंसान गीबत करके मरेगा किसी शख्स की, उसका चेहरा उसकी पीठ पर लगा दिया जाएगा और वो शख्स होगा जो सबसे पहले दोजख में डाला जाएगा, और यह गुनाह उस वक्त तक माफ नहीं होगा जब तक जिसकी गीबत की है वो खुद माफ ना करते दुनिया के अंदर। मुझे बताएं गीबत कितनी आम है, एक, और उसके बाद कितने लोग माफी मांगते हैं, नंबर दो, नंबर तीन, और कितनी गीबत करते हुए इस दुनिया से जा रहे हैं, कितने नमाजी, कितने हाजी साहब, कितने फला, सब कुछ है, वही तो बात है ना, दायरे में नहीं है जिक्र जो नहीं है। और जब इंसान जिक्र करता है उसमें एक नूर पैदा हो जाता है, फिर वो समझ जाता है इंशाल्लाह एक दिन गीबत को निकाल देता है, निकल जाती है। मुझे दिखाया ना जो जिक्र नहीं करता गीबत निकाल के दिखा दे, मैं देता हूं उसको अपना मकान दे दूंगा, ये मेरे पास और तो कुछ नहीं है, बगैर जिक्र के मुझे गीबत बता दे, मैं गीबत छोड़ देता हूं, थोड़ी नहीं सकता। माफी देखें कितनी सख्त है इसकी, और ये कि सबसे पहले, और ये है अस्काब रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं गीबत के बारे में, बहुत बड़े साहबी हैं, कहते हैं मैं एक चीज बताता हूं गीबत में, उन्होंने ये बात इस तरह की, मैंने पढ़ा है कहीं, वो कहते हैं कि गीबत वाला जो है अगर तोबा भी कर लेगा तो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, और तोबा के बगैर मर गया तो सबसे पहले दोजख में जाएगा। अब मैं और आप देख रहे हैं कि हम जाएंगे कहां, फिर कौन सी नमाज बचाएगी, कौन सा हज बचाएगा, कौन सी चीज हमें बचाएगी, मुझे बताएं। बचाएगी एक ही चीज, जब आप शूर पैदा हो जाए, आप नूर आ जाए और गीबत को यहीं खत्म करते हैं। बल्कि एक आसान तरीका बताता हूं गीबत की तौबा, जब एहसास पैदा हो जाएगी गुनाह है, हर वक्त अलर्ट रहे आपके गुनाह हमसे नहीं होना चाहिए, तो फिर किस तरह, एक तरीका तो यह है उससे मांगो जिससे आपने गीबत की है, जाओ मिनते करो, वरना इन साहबों के लिए तैयार होकर तुम्हारा मुंह जो होगा तुम्हारी पुष्ट पे होगा, और सारे लोग जो आपको हजरत साहब, पीर साहब, फला साहब, फला साहब कहते होंगे ना, अपनी आंखों से देखेंगे कि पीठ के पीछे मुंह लगा हुआ है इसका, सबसे बड़ा साहब पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा उसको। तो किस तरह मांगे इसकी माफी, एक और तरीका देखा हदीस के जरिए साहब बताता हूं कि आपने गीबत की या मैंने गीबत, मुझसे होगी जल्दी में हो गई, इंसान शैतान जो हमारे साथ, तो क्या हुआ, जैसे गीबत हो उसी वक्त माफी मांग लो अल्लाह ताला से, अगर उसी वक्त माफी मांग ली तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी उस आदमी जाने तक, अल्लाह ताला माफ कर देंगे इंशाल्लाह। ये अल्लाह ने एक झील दी है जिक्र, क्योंकि और एहसास उसी को होगा, किसको, جو ذکر کرتا ہو کہ یار میں کیتا ہے تو سب گناہ تو سب کر جاتے ہیں نا, اور جو ذکر وہ تو بد احساس ہوگا نا, مگر میں کیا کہا یار صحیح بات تو کہی نا, ہے نا وہ ایسا, فرق کیا پڑتا ہے یار, جا بتا دو اس کو, کیونکہ اس میں احساس ہی نہیں. لیکن جس میں نور پیدا ہو جائے گا اللہ کے ذکر سے, وہ کہ یار میرے منہ سے کیا نکلے گا, فوراً اللہ تعالیٰ استغفر و تعالیٰ فرق پڑا ہے کتنا. آپ سب ذکر کرنے والے لوگ ہیں, میں تو خیر پھڈا آدمی ہوں, ذکر کہاں کرتا ہوں. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پہلے گناہ جو آپ کرتے تھے اب گناہ میں کتنا شعور پیدا ہو گیا, نہیں دیکھ ذکر تھی بڑی چیز. جبھی تو کیا فاتح الجنہ, ساری جنتوں کو کھول دے گا اللہ کا ذکر, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ ساری جنتوں کو کھول دے گا. اتنی زبردست طاقت والی چیز اللہ تعالیٰ بتائیے, یاد کرو ذکر کرو اللہ کا ذکر کو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت میں تمہارا انتظار کر رہی ہے, چند دنوں کی زندگی گزارو طریقے کے ساتھ. انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے نا بھائیو, میں کروں آپ بھی, کہ پوری زندگی ہمارے دائرے کے اندر ہو, کس کے, لا الہ محمد رسول اللہ, اور اس دائرے میں رہنے کے لیے ہمیں کیا محنت کرنی ہے, لڑنا کس چیز کا ہے, ذکر اللہ. یہ نہیں صبح شام ہر وقت ذکر رہو, ہر وقت یہ جو مراقبہ ہے نا مراقبہ, اس کا طریقہ سنیں کیا کرنا ہے اس کو, ہم یہ مین ذکر ہے, نقشبندی ہو غور سے سن لو, جو کلمات پڑھتے ہیں یہ ذکر نہیں ہے ہمارا, اتصال ثواب, یہ مین ذکر ہے مراقبہ, اس کو سمجھو. جس نے نہیں سیکھا سیکھ لے, ابھی یہی سکھانے آیا ہوں میں, سمجھے نا, یہ ذکر میں وقت پھر رہا ہوں, یہ سکھانے آیا ہوں, یہی میری ڈیوٹی ہے کہ بھائی میں لوگوں کو اللہ کا ذکر سکھاؤں, کہ سینے پہ بتاؤں کہ یہاں سے ذکر ہوتا ہے, یہاں اس طرح کرو, یہ سیکھو, کیوں وقت ضائع کرتے ہو. آشرم آ گئے تو کل وہاں کیا ہوگا, اصل تو شرم وہاں ہوگی جب ننگا کر دے اللہ پاک صاحب کے سامنے. آج شرما کے سامنے آ گئے تو فرق تھوڑی پڑتا ہے, سیکھنے میں کیا شرمانا, آپ بھی ترغیب دیا کریں, لوگ ساتھ بیٹھو نا, کہ جاؤ مانگو, کیوں نہیں کہتے, آپ کے کہنے سے اگر کوئی آدمی چلے گیا تو ثواب آپ کو ملتا رہے گا ساری قیامت میں. جب دیکھا کہ کوئی آدمی ایسا ہے جو بےچارا شرما رہا ہے سیکھنا چاہتا ہے, ہمت دیں اس کو, کیا جاؤ اٹھو اٹھو, سامنے زبردستی لو, پھر اس کی شرم نکل جاتی ہے. کچھ بھی ہو, جیسے ماں مجھ سے آشمی نہیں تھا, میں نے بلا لیا دونوں کو, اب یاد کریں گے ساری زندگی حضرت صاحب کے, ان کی زندگی بدل گئی, شرما رہے تھے وہ, لیکن شرم شرما چاہتے تھے, شرما رہے تھے. ہم نے کہا کہ مسلمان بھائی کھینچ لیا ان کو, آؤں لے کھولو, کیا بات ہے, دل جاری ہو گیا, قلب جاری ہو گیا, ذکر شروع ہو گیا, زندگی بدل گئی الحمدللہ, ادھر سے ادھر چلے گئے, رائٹ سے لیفٹ پہ آ گیا. آپ بھی ترغیب دیا کریں, بھائی آئے کیوں گھبراتے ہو, ہم بھی آپ کی طرح تھے, ہم نے بھی اسی طرح سیکھا ہے, کھانے تو ہی کیا ہے, اس طرح ذکر کریں دیکھیں, کیونکہ کثرت ذکر کرنا ہے اور ہر وقت کرنا ہے, یہ نہیں کہ سب صبح شام بیٹھ کے ہم مراقبہ کر لیتے ہیں یا ابھی کر لیں گے, یہ تو یہ جو ہم کرتے ہیں نا, یہ تو ایک قسم کا یہ سمجھیں کہ ایک ٹیسٹ لے رہے ہیں, اصل یہ تو ٹیسٹ ہے, اصل تو یہ گھنٹوں گھنٹوں بلکہ صبح سے لے کے رات تک یہ ذکر, اس کا طریقہ یہ, جب ذکر ہم مراقبہ کرتے ہیں نا, اس وقت یہ سوچا کریں, نیت پکی کر لینی ہے کہ اللہ کی رحمت کا نور میرے دل میں آ رہا ہے, بولیں سب سے, اللہ کی رحمت کا نور, اللہ کی رحمت کا نور میرے دل میں آ رہا ہے, اور میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے, بس یہ دماغ میں چلتا ہے نقشہ, اللہ کی رحمت کا نور میرے دل میں آ رہا ہے اور میرا دل اللہ, بس یہ جب آپ ہر وقت کہتے رہیں گے, دل آپ کا ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے, ہر وقت یہ فکر آپ کے ذہن میں گھومتا رہے کہ اللہ کا نور میرے دل میں آ رہا ہے, میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے, اتنا پکا ہو جائے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں یہ جملہ گھومتا رہے گا, اور دل اللہ اللہ کرتا رہے گا, اور نور اللہ کا آتا رہے گا, اور اتنا آئے گا کسی دن اس نور میں آپ سب کچھ دیکھ لیں گے اللہ کے وسیلے سے. میں آپ میری بات کو یاد رکھوں, یہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, فکر یاد ہو گیا آپ کو یا نہیں ہوا, کہ اللہ کا رحمت کا نور میرے دل میں آ رہا ہے اور میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. اب کریں آپ بات, جس سے بات کرتے ہیں نا دل میں آپ یہ کہتے رہے, الحمد للہ آپ کا دل چلتے ہی رہے گا, بس دماغ پکا لیں, اللہ کے رحمت کا نور میرے دل میں آ رہا ہے اور میرے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں. اب جب ہم راک میں بیٹھیں تو یہی فکر ہے آپ نے کہنا ہے, تو پھر نیند بھی نہیں آئے گی الحمد للہ, ہر وقت الرٹ ہو کے یہی سوچتے رہیں گے اللہ کا دل رحمت کا نور میرے دل میں آ رہا ہے, میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے, میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے, ایسا مزہ آئے گا اس میں, آپ دیکھیں لطف آ جائے گا باتیں کرتے. تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیا, آج باتیں ہم نے کی ہیں اس پہ عمل کریں, کوئی چیز مشکل نہیں, اللہ پاک ہر چیز کو آسان کر دیتے ہیں. ہم پکی نیت کریں کہ اپنی زندگی کو شریعت اور سنت کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ. اور اس میں جو رکاوٹیں آئیں گی اس کو اللہ کا ذکر کر کے دور کریں گے اور ہم حالت میں اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ.